कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं अच्छा कैसे लिखें। विद्यार्थियों, ये पाठ लेखन कौशल से संबंधित है। अच्छा कैसे लिखें, इस पाठ की विशेषता यह है कि हम प्रतिदिन कुछ न कुछ लिखते हैं, पत्र लिखते हैं या प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं या निबंध लिखते हैं। तो लिखना केवल महत्वपूर्ण नहीं होता, जब आप 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं तो अच्छा लिखना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप प्रभावशाली ढंग से अपनी बात को प्रस्तुत नहीं करेंगे तो परीक्षा में अंक भी नहीं आएंगे और आपके अभिव्यक्ति कौशल का विकास भी नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि अच्छा लिखने के तरीकों को सीखें। शिक्षार्थियों, जो लिखने की प्रक्रिया होती है वह एक जटिल प्रक्रिया होती है और उसका जो ताना बाना होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस पाठ का जो प्रमुख उद्देश्य है उसे पहले हम देख लेते हैं। पहला उद्देश्य है कि इस पाठ को पढ़ने के बाद आप सही शब्द चयन, वाक्य विन्यास और वाक्य गठन करना सीख सकेंगे। दूसरा है, शुद्ध हिंदी लेखन के गुण पहचान सकेंगे। तीसरा है, लिखित अभिव्यक्ति को मुहावरे, लोकोक्ति आदि के प्रयोग से अधिक प्रभावी बना सकेंगे। चौथा है, विराम चिन्ह आदि का सही प्रयोग सीख सकेंगे। पांचवा है, अपने विचार को सही क्रम देते हुए उन्हें अपनी भाषा में ढाल सकेंगे। छठा है, अनुच्छेद, कहानी, आलेख आदि को पढ़कर अपने शब्दों में लिख सकेंगे
जी।
तो ये प्रमुख उद्देश्य हैं जो इस पाठ को पढ़ने के बाद आप में कौशल विकसित करेंगे
जी।
सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि हम अपने भावों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से करते हैं।
बिल्कुल सर।
हम आम जीवन में जो भी बोलते हैं उससे यह ज्ञात होता है कि हमारे भाव कैसे हैं और कितने सुंदर तरीके से, कितने सरल तरीके से हम अपनी बात को कह रहे हैं, क्योंकि हम जीवन में तरह तरह के भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। कभी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करते हैं, कभी आश्चर्य की, कभी दुख की। तो इन सभी अभिव्यक्तियों में
जी।
भाषा उसके अनुकूल होनी जरूरी है।
बिल्कुल सर।
जैसे अगर प्रसन्नता व्यक्त करनी है तो हम कहेंगे, अरे मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया, या देखो यह तस्वीर क्या कमाल की है। उसी तरह से मान लीजिए हमें आश्चर्य व्यक्त करना है
जी,
तो वहां हम कह सकते हैं, अरे यहाँ आकर मसूद ने मुझे अचरज में डाल दिया। तो
बिल्कुल।
इस तरह से आप देखेंगे कि जैसे हमारे मन के भाव होते हैं उसी तरह की हमारी अभिव्यक्ति होती है
जी।
आपको जानना यह बहुत जरूरी है शिक्षार्थियों की दो पक्ष मुख्य रूप से होते हैं अपनी बात को कहने के। एक तो होता है उसका बाहरी पक्ष, जिसके अंतर्गत शब्द चयन, वाक्य गठन, मुहावरा प्रयोग, अभिव्यक्ति शैली आदि को हम ले सकते हैं। और दूसरा पक्ष होता है जो उसका भीतरी पक्ष है, जिसे भाव या विचार पक्ष भी कह सकते हैं। इसमें विचारों या भावों को गंभीरता के साथ, स्पष्टता के साथ और सरलता के साथ प्रस्तुत किया जाता है। इसलिए अगर हम मुख्य रूप से देखना चाहें कि अच्छे लेखन के लिए क्या क्या तीन शर्तें होती हैं, तो उसमें पहला हो सकता है कि आपका लेखन प्रभावी हो, दूसरा यह हो सकता है कि जो लिखा जाए वह सटीक हो, और तीसरा जो लिखा जाए वह व्याकरणिक दृष्टि से भी शुद्ध हो। तो शुद्ध लेखन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसमें सुंदरता भी हो और शुद्धता भी हो, वाक्य की बनावट भी ठीक हो, व्याकरण की कोई गलती भी ना हो, और सटीक लेखन का क्या मतलब हुआ कि आपकी बात बिल्कुल साफ और स्पष्ट हो, अर्थात जो आप कहना चाहते हैं वही अर्थ निकले और वही दूसरों तक पहुंचे। कई बार आप देखते होंगे कि आपके सामने वाला क्या बोल रहा है आप समझ नहीं पाते हैं, तो वहां जटिलता होती है अभिव्यक्ति की। इसीलिए आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि जब तक हमारे भाव या विचार दूसरे तक संप्रेषित नहीं होते हैं तब तक उन्हें सुंदर नहीं कहा जा सकता। अब कुछ और पक्षों को हम देखते हैं। आप देखिए कि हम किस प्रकार वाक्यों का निर्माण करते हैं। उसकी सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और उससे उसके बाद हम शब्द से परिचित होते हैं। तो लेखन में यदि हम शब्दों का चयन ठीक से नहीं कर पाते तो गलतियां होने की पूरी संभावना होती है। सामान्य तौर पर आप देखेंगे कि ज्यादातर बच्चों को वर्तनी की दिक्कत होती है। जैसे आप कई लोगों को सुनते होंगे वो कहते हैं आपने स्नान किए कि नहीं
जी।
अब यहाँ शब्द गलत है, स्नान शब्द है स्नान
जी।
उसी तरह से आप देखेंगे कि वो और बौ की गलतियां बहुत लोग करते हैं,
बहुत होती है सर।
वर्षा कहना चाहिए तो वर्षा बोलते हैं
जी,
वनस्पति कहना चाहिए तो वनस्पति कहते हैं
जी,
है ना। या हम आम बोलचाल में नमस्कार जो शब्द है उसमें सौ की गलतियां करते हैं
सर। ये सा और शा की गलतियां भी बहुत होती हैं। बहुत सौ के नाम होते हैं, जैसे आशा नाम है तो उसको आशा बोलना चाहिए, आशा बोला जाता है। और
हाँ।
तो ये सब सिर्फ बहुत देखने को मिलता है। उषा, उषा एक अच्छा प्रोनाउंसिएशन है लेकिन उसको बुलाएगा उषा। तो ये श्या और शा की भी सर बहुत गलतियां होती है।
और इसको बच्चे बड़े हो जाते हैं फिर भी अंतर नहीं समझ पाते।
बिल्कुल सर।
तो इसका प्रयोग आप जरूर सीखें और हम अपने अध्ययन सामग्री में भी जगह जगह आपको व्याकरण के बारे में बताते हैं
जी।
तो उनको ध्यान से पढ़ें आप। इसके अलावा एक और गलतियां होती हैं कि हम शब्दों की पुनरावृत्ति करते हैं
जी।
जैसे पत्रों में आपने देखा होगा कि कई लोग लिखते हैं आपका भवदीय। अब यह गलत है क्योंकि भवदीय में पहले से ही शामिल है आपका, तो आपका अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, ये पुनरुक्ति हो गई
जी।
इसी तरह से एक और उदाहरण हम दे सकते हैं, गुनगुने गर्म पानी से नहाने में बहुत आनंद आता है। अब जब आप गर्म पानी कह दिए तो फिर गुनगुना के लिखने की क्या जरूरत है, या तो गुनगुने पानी से बोलिए
जी।
एक और उदाहरण जो लोग गलत करते हैं कि यह वजह है कि जिसके कारण मैं आज तक मैं तुमसे नहीं मिला। अब यहाँ वजह भी लिख रहे हैं कारण भी लिख रहे हैं
जी।
तो इसको कहते हैं दोहराव का दोष।
हाँ, एक ही वाक्य में एक ही अर्थ के दो चीजों को बोलना।
हाँ, एक ही अर्थ है, दो बार उसी को कह रहे हैं
जी जी,
है ना। तो इसका मतलब हुआ शिक्षार्थियों की हमें अशुद्ध भाषा, उच्चारण दोष, वर्तनी दोष, शब्द प्रयोग, वाक्य रचना संबंधी दोष, इन सबसे बचना पड़ेगा। ये सभी बाधक बनते हैं हमारे लिखने में
जी।
इस पर हम विस्तार से थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे उपयुक्त शब्दों का चयन, कहाँ पे कौन सा शब्द प्रयोग करना चाहिए, ये शिक्षार्थी को जानना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल सर।
अब आप एक उदाहरण आपको देता हूँ मैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से घनघोर युद्ध किया था। अब यहाँ देखें कि घनघोर शब्द गलत प्रयोग हुआ है।
बिल्कुल सर,
है ना
जी।
तो यहाँ घनघोर की जगह घमासान होना चाहिए,
घमासान होना चाहिए जी सर।
इसी तरह से अगर आप वाक्य का प्रयोग करते हैं आम जीवन में कि मेरे मम्मी पापा बूढ़े हो गए हैं, तो ये अच्छा नहीं लगेगा।
नहीं,
मम्मी के साथ, मम्मी पापा के साथ जो है माँ बाप अगर कहें
जी,
तो वो ज्यादा सटीक लगता है।
बिल्कुल सर,
है ना
जी।
उसी तरह से अन्य उदाहरण भी आप दैनिक जीवन में देखते होंगे कि हम बीच में अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर देते हैं
जी,
जहाँ नहीं भी जरूरत होती है
जी। बिल्कुल,
जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है आपकी सामग्री में कि विनोद विगत 2 डेज से मैं तुमसे मिलना चाहता था।
जी
अब आप बताएं इस तरह की भाषा क्या हिंदी में चलेगी,
नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं।
है ना? तो इसलिए प्रभावी लेखन के लिए जरूरी है कि आपको आपको शब्दों की सही जानकारी हो,
जी
उनका ठीक प्रयोग जान सके। इसके अलावा कहाँ उपसर्ग लगाना है, कहाँ प्रत्यय लगाना है और
जी
कहाँ नया शब्द बना सकते हैं, ये भी जानना जरूरी है। इसके
जी सर
साथ साथ आप तो व्याकरण में पढ़ेंगे पर्याय विलोम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द,
जी
ये
सर
सभी महत्वपूर्ण होते हैं जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं। कुछ उदाहरण मैं आपको और देता हूं तो यह बात स्पष्ट होगी। जैसे शब्द चयन में पहले एक पंक्ति में पढ़ता हूं फिर उसको दूसरे तरीके से हम देखते हैं कि उनमें क्या अंतर है।
जी
जैसे एक उदाहरण है, शिमला पहाड़ पर बसा देखने योग्य स्थान है। अगर इसको दूसरे शब्द में अच्छी तरह से कहें तो हम कह सकते हैं शिमला दर्शनीय पर्वतीय स्थल है।
हाँ बिल्कुल
अब
नॉर्मल
देख
शब्द
लीजिए, एक ही बात है दोनों में,
जी बिल्कुल,
लेकिन कितना अंतर है।
उस लंबे सेंटेंस को 3 शब्दों में खत्म कर दिया जाएगा।
हाँ, कम
जी
शब्दों में और सुंदर शब्द है
सुंदर शब्द, जी
ना।
बिल्कुल।
अब जैसे एक गलत प्रयोग करते हैं हम लोग आम जीवन में कि वर्षों बाद बेटे को देखकर माँ पगला गई, ऐसे
हाँ
शब्द
जी
प्रयोग करते हैं कि पगला गई।
हाँ पगला गई,
तो यहाँ लिखना चाहिए कि वर्षों बाद बेटे को देखकर माँ विभोर हो गई, है
हाँ आत्मविभोर,
ना।
मतलब सुध-बुध खो बैठी, उसको एक तरीके से डायरेक्ट पागलपन ना कह के विभोर हो
हाँ
गई। जी सर
वही है कि वो आह्लादित हो गई, वो खुश हो गई। तो यहाँ ये जो शब्दों का प्रयोग है इसको बड़े करीने से करना पड़ता है। आम जीवन में आपको इन प्रयोगों का जो रूप है उसको जानना पड़ेगा। जैसे
जी
कुछ तुलनाएं या उपमाएं दी जाती हैं साहित्य में, वो भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि उसका सही प्रयोग कैसे है। जैसे
जी
आंखों की तुलना किससे की जाती है आपको पता होना चाहिए। झील के साथ,
जी
कमल सी
हाँ
आंखें, हिरनी
जी
सी आंखें,
बिल्कुल सर।
ये इसका सही प्रयोग है। उसी तरह से अगर दांत का प्रयोग करें तो मोती से सीप से दांत,
जी बिल्कुल।
ये एक प्रमाणित है उपमान, इसका प्रयोग करना चाहिए। किसी
जी
को धनी कहना है तो कुबेर सा धनी है ना।
हाँ जी
बलवान कहना है तो भीम सा अर्जुन सा बलवान है या हनुमान सा बलवान है। तो
बिल्कुल सर
यहाँ आप देखें कि शब्दों के प्रयोग का कितना मर्म है,
जी
इसे जानना बहुत जरूरी है। उसी तरह से एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, मुहावरों का प्रयोग।
जी
आप देखते होंगे कि कई बार इतने अच्छे तरीके से मुहावरे का प्रयोग किया जाता है कि वाक्य की शोभा बढ़ जाती है।
बिल्कुल सर बहुत अच्छे से।
हाँ, जैसे हम लोग प्रयोग करते हैं आम जीवन में कि यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है ना।
जी
यहाँ बहुत आसानी से हमने मुहावरे का प्रयोग कर दिया। उसी तरह से इस बच्चे ने मेरी नाक में दम कर रखा
जी
है ना। इसको अगर इस तरह से कहते हैं कि इस बच्चे की शैतानियों से मैं बड़ी परेशान हूं, तो उतना आनंद नहीं आता सुनने में।
नहीं बिल्कुल भी नहीं।
उसी तरह से भारतीय सैनिक लड़ने में जीवन की चिंता नहीं करते। अगर इसको मुहावरे में बोले तो हम कहेंगे भारतीय सैनिक सिर हथेली पर रखकर लड़ते हैं,
बिल्कुल सही
है
बात
ना।
है सर।
तो ये भाषा का जिसको कहते हैं चमत्कारिक प्रयोग है।
बिल्कुल।
भाषा ऐसे समृद्ध होती है और आपको जानना चाहिए। मुहावरे पहले मुहावरे याद भी कराए जाते थे व्याकरण
बिल्कुल सर, हमने
की
खुद स्कूल
किताबों
में
से। हाँ,
पढ़े हैं सर, बिल्कुल जी
तो आंख से, कान से, नाक से, कितने मुहावरे, पूरी किताब होती थी मुहावरे लोकोक्ति की, है
बिल्कुल सर
ना। रिजल गगरी छलकत जाए,
सर, नाच न जाने
मोहे राम
आगन
बगल में
टेढ़ा।
छुरी, ऐसे ऐसे करके।
हाँ एक तो सर नाच न जाने आगन टेढ़ा,
हाँ
ये जो किसी को कुछ नहीं आता फिर भी अगर वो करना चाहे तो उसके लिए बहुत सारी चीजें याद की थी और अच्छा भी लगता था सर इन सबको बोलना भी।
हाँ वो आम जीवन में प्रयोग भी करते हैं जो लोग, जिनको अधिकार है भाषा पे, तो वो भाषा का सौंदर्य है।
जी
उसी तरह से वाक्य जो बनाते हैं, वाक्य रचना जो होती है, वाक्य का जो गठन होता है वो भी खास तरह का होना चाहिए। और उसमें भी शुद्धता बहुत जरूरी है। शिक्षार्थी ये नहीं समझते कि वो जो वाक्य लिख रहे हैं उसमें गलतियां कहाँ हैं। जैसे एक एक वाक्य आपको यहाँ सुनाता हूँ कि महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा। अब ऐसे ऊपर से देखने में नहीं लग रहा है कि कोई गलती है इसमें
जी,
लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि शब्दों की अनविति जो है, क्रम जो है, उसमें गलती है ना
जी।
क्योंकि यहाँ अगर आप पूछें कि कौन आभारी रहेगा तो किसका आभारी रहेगा, तो यहाँ पे उत्तर नहीं मिलता आपको। इसलिए यहाँ पे सही है कि देश महात्मा गांधी का सदा आभारी रहेगा।
बिल्कुल सर,
देश पहले हो जाएगा है ना
जी।
तो इसको कहते हैं अनविति, मतलब शब्दों का क्रम सही होना चाहिए,
क्रम सही होना चाहिए।
इसी तरह से मैं और भी उदाहरण दूंगा कि अनविति कितने तरीके से हो सकती है। जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया की अनविति
जी।
अब आप सामान्य जीवन में प्रयोग करते हैं तो आप देखते हैं कि कर्ता का जो लिंग है वही होना चाहिए कर्म का भी
जी,
है ना, क्रिया उसी के अनुरूप होनी चाहिए।
बिल्कुल सर,
जैसे गीता आप कह सकते हैं गीता ने फल खाई है ना
जी
तो यहाँ गलत है,
सही गलत है, वह गीता ने फल खाया
खाया होगा तो
जी।
ये जो प्रयोग है
जी,
क्योंकि यहाँ गीता स्त्रीलिंग है और कर्म जो है फल पुल्लिंग है, इसलिए क्रिया पुल्लिंग के अनुसार होगी।
बिल्कुल सर,
तो ये क्रम जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। उसी तरह से एक और अनविति होती है विशेष्य और विशेषण की। विशेष्य विशेषण की का मतलब होता है जिसकी विशेषता बताई जाए विशेष्य है और जो विशेषता बताई जाए वो विशेषण है
जी।
जैसे लाल गाय, अब आप देखें कि यहाँ गाय विशेष्य है और लाल विशेषण है,
विशेषण है,
तो इनका भी सही प्रयोग होना चाहिए। अगर आपने सही विशेषण नहीं लगाया तो वहां पे दोष हो जाएगा विशेषण का, है ना
जी सर, बिल्कुल।
इसी तरह से संज्ञा सर्वनाम की भी अनविति होती है। जैसे अगर आपने लिखा कि डाकुओं का एक गिरोह पकड़े गए है ना
जी,
तो यहाँ डाकुओं तो बहुवचन है
जी,
और एक गिरोह
हाँ,
एक गिरोह पकड़ा गया यहाँ पे होना चाहिए शुद्ध रूप में
जी,
है ना
जी सर,
क्योंकि यहाँ कर्ता समूहवाचक है।
हाँ,
क्योंकि
डाकुओं
है,
का एक समूह आ रहा है ना, समूह के संग एक आ रहा है, तो सर वहाँ आएगा कि पकड़ा गया। जी,
तो ये जो प्रयोग है उसी तरह से आपको शिक्षार्थियों ध्यान देना चाहिए कि सर्वनाम का भी जब आप प्रयोग करते हैं तो वो भी सही करना चाहिए आपको। जैसे लड़का लोग गए, अब इस तरह का प्रयोग करते हैं
जी,
या तो बोले आप लड़का गया या लड़के गए है ना। उसी तरह से राम लक्ष्मण और सीता गई, अब यहाँ तीन आ रहे हैं लोग,
हाँ,
तो तीन आ रहे हैं तो इसलिए राम लक्ष्मण और सीता गए
आएगा,
ये प्रयोग करना चाहिए
जी।
एक और गलतियां शिक्षार्थी बहुत करते हैं ने और को का, है ना, तो ने का प्रयोग केवल भूतकाल के वाक्य में होता है। जैसे राम ने पाठ पढ़ा, ये जानना बहुत जरूरी है
जी।
उसी तरह से राम ने पुस्तक पढ़ी, इस तरह का प्रयोग आप देखें और व्याकरण जरूर सीखें आप। इसीलिए ये पाठ दिया गया है कि जो आम जीवन में आप लिखने में गलतियां करते हैं उनका सुधार करें
जी।
एक और गलती की ओर मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, विराम चिन्हों का ठीक प्रयोग।
हाँ सर, वो सबसे जरूरी होता है सर, ताकि पता चले कहाँ से हमारा वाक्य खत्म हो रहा है, कहाँ से हमें इसे लिंक करना है, कहाँ पे रुकना है, हमें इस चीज का पता होना चाहिए।
और विराम चिन्ह कई तरह के होते हैं, उनमें अंतर भी समझना चाहिए
जी,
है ना
जी।
तो अल्प विराम का पता होना चाहिए आपको, पूर्ण विराम का पता होना चाहिए। जैसे एक वाक्य है, तुम उठो मत बैठो बैठे रहो, यहाँ कोई विराम नहीं लगाया है चिन्ह
जी।
अब समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, तुम उठो मत बैठे रहो है ना, तो इसको दो तरह से हम देख सकते हैं। अगर तुम उठो के बाद कॉमा लगाया
हाँ,
तो इसका इसका मतलब होगा तुम उठो मत बैठे रहो, अर्थात उठने का आदेश है।
जी
और अगर दूसरा सेंटेंस बनाए तो हम कहेंगे तुम उठो मत
मत
बैठे
बैठे
रहो।
रहो
हाँ, तो
जी।
नहीं उठने का आदेश है यहाँ। इस तरह का जो प्रयोग होता है,
जी जी जी
भाषा बड़ी ही फ्लेक्सिबल होती है। आपको
बिल्कुल
जानना
सही।
पड़ेगा कि एक शब्द का अर्थ का अनर्थ हो जाएगा।
हाँ सर, यही कहा जाता है कि शब्द एक अलग अर्थ का अनर्थ कर दिया जाता है। एक शब्द खराब है तो सर सब कुछ खराब हो जाता है।
हाँ, तो इसलिए ये बड़े माइन्यूट चीजें हैं, बहुत ही सूक्ष्म चीजें हैं जो शिक्षार्थियों आपको जानना चाहिए।